शाम को तुम्हें लेने आऊं या वहीं रुकोगे?
पता नहीं, शायद रुक जाऊं।
लगता है तुम्हारी नाराजगी अभी तक है।
कौन सी नाराजगी? पुफी की खातिर जा रहा हूं। इस वक्त मैं उन्हें तन्हा नहीं छोड़ सकता। मैं
जैसा भी हो बता देना।
चलो बैठो।
अरे ये सब तुमने अकेले क्यों पकाया है?
तुम्हें पता है ना, मुझे खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है।
लेकिन ये सब अभी मुनासिब नहीं था।
डॉक्टर ने जो दवा दी थी उसे खाने के बाद मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ, और अभी भी वो दवा ली है। मेरे काम करने से तुम्हें कोई परेशानी है? शायद पजमान आया है।
हाँ लगता है पजमान आया है।
अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम, कैसे हो तुम?
मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं।
हाँ सब ठीक है, अंदर आओ।
पुफी कैसी हैं?
फिलहाल अभी ठीक हैं।
कहाँ हैं? आपको यकीन है कोई गलती नहीं हुई होगी?
तुम्हें किसने बताया?
खुद पुफी जान ने बताया। कहा मैं तुम्हें खुद बताना चाह रही थी। इस टाइम में ऐसी दावत क्यों की पुफा?
तुम इसे जानते नहीं क्या? वो तो हमेशा दूसरों को तसल्ली देती रहती
जी।
है। अच्छा तुम अंदर जाओ, जाओ।
अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप पुफी जान? मांदू, जी आप कौन?
आप सईद बात कर रहे हैं?
जी बोल रहा हूँ।
जी मैं बैंक से बात कर रहा हूँ। आपको बताना जरूरी है कि आज आपके दो चेक हमारे पास आए हैं।
दो चेक? उसकी रकम कितनी है?
5 लाख जबकि दूसरा 3 लाख का है।
आप कुछ दिन रोक नहीं सकते क्या?
नहीं सईद साहब, चेक क्लियर है। अगर आपने 1 घंटे में पैसे नहीं भरे तो चेक रिटर्न हो जाएंगे।
आखिर इतने पैसे मैं 1 घंटे के अंदर कहां से लाऊं?
देखिए ये हमारा मसला नहीं है। खुदा हाफिज।
सलाम।
ऐसे खड़े होकर क्या देख रहे हो मुझे? कहां थे तुम? चलो जाओ अपना काम करो जाके।
बहुत अच्छा सिला दे रहे हैं आप हाजी साहब, अब लोगों से मेरा पीछा करवाते हैं?
नहीं जनाब, हबीब ने अचानक आपको बैंक में देखा था। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आपके अकाउंट में इतने पैसे कहां से आए?
मैं आपको जवाब क्यों दूं? बोले।
सही कहते हो, सईद को जवाब दोगे तो बेहतर होगा। वहां जाओ।
मैं अंदर आ सकता हूँ?
जी आइए।
अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम।
क्या आप मोहद्दत साहब के रिश्तेदारों में से हैं?
जी आपको कोई काम है?
वो दरअसल, अगर आप इजाज़त दें तो आपकी खिदमत में कुछ अर्ज करूँ।
जी जी ज़रूर, अंदर आएँ जनाब।
मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात तवज्जो से सुनेंगे।
आप अंदर तो आएँ।
शुक्रिया।
कोई बात नहीं,
बहुत शुक्रिया।
तशरीफ़ रखें।
बहुत शुक्रिया
जी। क्या हुक्म है मेरे लिए?
ये क्या बात हुई, तुम खुद इंसाफ करो, खुद को सईद की जगह रखकर सोचो, फिर पता चलेगा तुम्हें।
आप ठीक कह रहे हैं हाजी साहब, हमारी औकात ही क्या है कि आप जैसे अमीरों की तरह बैंकों में अकाउंट खोलें। और वो पैसे मेरे पास ये मकान बेच कर आए हैं और ये उसके कागजात हैं। ये चंद दिन पहले का है, कुछ और पूछना है?
तो तुमने अपना घर क्यों बेचा?
मेरे घर के बिकने का इन बातों से कोई ताल्लुक नहीं है, समझे आप? मिल गया जवाब आपको हाजी साहब।
मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ सोहराब, मैंने अब तक तुम्हारे बारे में सईद को कुछ नहीं बताया।
तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने अब सोच लिया है कि मैं सईद के लिए काम नहीं करूंगा और बहुत जल्द आप ये खबर सुन लेंगे।
जनाब मुझे समझ नहीं आ रहा, आप उसी औरत के शौहर है ना जो हाजी अब्बास के पास आई थी? उन्होंने अर्ज किया था, नाम एक जैसा है, बस यही ना, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप मुझसे?
मैंने आपसे कोई गलत बात तो नहीं की जो आप गुस्सा हो रहे हैं?
माफ कीजिएगा, और हाँ, हाजी अब्बास ने एक ही शादी की है।
क्या मरहूमा तलत साहिबा हाजी अब्बास साहब की साहब का जौजा नहीं थी?
ये तलत कौन है? जनाब मजीद ऐसी बातें बिल्कुल मत करें, आप मजीद ऐसी बातें ना करें तो अच्छा है। हाजी अब्बास की इस बाजार में बहुत इज्जत है और ये बातें उनकी शान के खिलाफ है।
आपको गलत फहमी हुई है, मैं इस बाजार में उनकी इज्जत खराब करने नहीं आया और ना ही नीयत है।
और आप ना चाहते हुए भी ये काम कर रहे हैं? लगता है आप उस अब्बास मुद्दत की तलाश में जो तलत नामी औरत का शौहर है। और मैं वाजे कर दूं, उस बंदे से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, और ये सब बातें आपकी वाइफ को बता दी हैं। अब आपकी समझ में नहीं आ रहा तो मैं क्या करूं?
बात यह है कि हाजी साहब खुद कहते हैं कि उनकी पहली शादी हुई थी। अच्छा कोई बात नहीं, लगता है आप मेरी मदद करना ही नहीं चाहते, माफ कीजिएगा, आपको जहमत दी मैंने, खुदा हाफिज।
ठीक है, खुदा हाफिज।
फरमाइए।
अस्सलाम वालेकुम।
मवद्दत साहब कैसे हैं? फरमाइए, कैसे याद किया?
आप लोगों ने मेरे साथ नाइंसाफी क्यों की?
मगर हुआ क्या?
आपके शौहर ने बाजार के कोने कोने में जाकर मेरी इज्जत बर्बाद कर दी।
मेहरदाद, वो ऐसा क्यों करेगा?
आप उसी से पूछें।
अभी तो वो नहीं है, आप बताएं क्या बात हुई है।
देखिए मोहतरमा, मैंने आप पर इत्मीनान किया और अपनी जिंदगी का राज बताया। किसी को भी नहीं मालूम था कि मेरी दो शादियां हुई हैं। आपके शौहर ने सबको जाकर ऐसा क्यों कहा?
नहीं नहीं, मेहरदाद ने ऐसा नहीं किया होगा, वो तो आपके साले को जानता तक नहीं है।
क्यों नहीं जानता? वो जानता है उसे। मेहरदाद ने जाकर अभी एक घंटे पहले सईद को सब कुछ बताया है।
यकीन करें मुझे इस बात का नहीं पता, शर्मिंदा हूँ।
आपके शर्मिंदा होने से मसला हल नहीं होगा। मोहतरमा, आज के बाद मुझे तंग करने की कोशिश मत करना।
तुमने ऐसा क्यों किया मेहरदाद?
हेलो,
अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब।
वालेकुम अस्सलाम।
आज आप दुकान पे आएंगे क्या?
नहीं, मैं आज नहीं आऊंगा।
शाम को भी नहीं?
कुछ पता नहीं।
कहाँ जाना है?
वरमन जाना है काम से।
खैर तो है हाजी साहब,
मुमकिन है शाम तक ना आ पाऊं।
बिना के ऑर्डर का क्या करें?
तुम खुद देख लो कि क्या करना है। सुनो हबीब, किसी को मत बताना कि मैं बरमिन जा रहा हूँ।
अकेले जाना है?
हाँ।
अपना ख्याल रखिएगा।
अच्छा,
खुदा हाफिज।
खुदा हाफिज।
इस बार तो हाजी अब्बास मदद कर दी, बाकी चेकों का क्या करोगे?
वो मैं खुद ही देख लूंगा।
ठीक कह रहे हैं सईद साहब, मैं ये बात अच्छी तरह जानता हूँ कि इन चेकों का मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन याद रखें एक चीज से मेरा बहुत गहरा ताल्लुक है।
किस चीज से?
2 महीने की तनख्वाह रह गई है मेरी।
मेरे पास पैसे नहीं है।
चलें आपकी बात सही है, आपका कारोबार भी अब बैठ गया है, पैसे भी आपके पास नहीं है, तो मुझे जाने दीजिए, मैं कोई और काम ढूंढ लूंगा।
क्या?
मैंने कहा इस सूरत हाल में इस दुकान का, इस कारोबार का आप खुद सोचें, अब फायदा क्या है? आप खुद देख रहे हैं कि हर रोज कोई ना कोई कर्ज खा पुलिस के साथ चला आता है, हम क्या करें? हम रोज डरते हैं। क्या करना चाहते हैं आप?
तुम बताओ क्या करूं मैं? अब पूरे 30 साल से इस दुकान का चर्चा है बाजार में, एक ही रात में बंद कर दूं? हाँ,
ये किसने कहा दुकान बंद कर दो? एक मशवरा है, इस दुकान को किराए पर दो ताकि कुछ तो पैसे आए।
हाँ ना, किराए पे दे दूं ताकि बाजार वालों के सामने मजीद बेइज्जत हो जाऊं, तो लोग यही कहेंगे ना कि सईद अफवान का दिवालिया हो गया, अब घर पे बैठेगा। तुम चाहते हो कि मैं यही काम करूं? हाँ,
अच्छा नहीं करें ये काम। मैं अब मशवरा देने की गुस्ताखी नहीं करूंगा कि आप ये काम करें या आप ये काम ना करें। अगर मैंने ये सब कुछ कहा तो सिर्फ आपकी हमदर्दी में।
ओहो, जरा हालात बेहतर होने दो, सब ठीक हो जाएगा।
मैं उन थोड़े से पैसों का मोहताज हूँ जो मुझे आप बहुत मुश्किल से देते हैं, अगर आप वो भी न देंगे तो आप बताएं मैं जिंदगी कैसे गुजारूं। देखें सईद साहब, अगर तनख्वाह वगैरह न मिले तब भी कोई बात नहीं, मेरे दिल में आपके लिए बहुत हमदर्दी है, लेकिन मैं यहाँ दुकान में बैठकर आपकी बेएतमादी और बदगुमानी और उस लड़के हबीब की जासूसी कब तक बर्दाश्त करता रहूंगा?
कौन सी जासूसी? हाँ बताओ।
सईद साहब, आप ये बात बहुत अच्छी तरह जानते हैं।
मुझे मालूम था तुम जल्दी या देर से ये बातें जरूर करोगे। मुझे मालूम है तुम सब एक जैसे हो, जब किसी से फायदा हासिल ना हो फौरन उसे तना छोड़ देते हो। तुम भी जाना चाहते हो ना?
सईद साहब, मैं नवा खराम नहीं हूँ।
फजूल बात मत करो, बच्चे हो अभी।
क्या तुम कहीं और काम करना चाहते हो?
अगर आप इजाजत देंगे तो कर लूंगा। मैं आज ही अपना सामान ले जाना चाहता हूँ, अगर ले जाऊं तो कोई मसला तो नहीं?
जाहिर है तुम्हें इतनी जल्दी है, कहीं और काम मिल गया है तुम?
नहीं, मुझे अब कालीन धोने का काम करना है।
अच्छा है, तरक्की हो गई, कालीन बेचने से कालीन धोने का काम बेहतर है। अगर इतनी ही जल्दी है तो शाम तक आप अपना सामान इकट्ठा करके जा सकते हैं, जा सकते हैं।
सईद साहब, अगर मुझे घर चलाने के लिए खर्चा मिलता तो काम ढूंढने में कभी जल्दी ना करता। मेरी जल्दबाजी को बेवफाई न समझिएगा। अब इजाजत दें।
हाँ भाई ये वाली ताज़ी है, आप ये वाली ले जाएं। बहुत शुक्रिया।
अस्सलाम वालेकुम जनाब।
वालेकुम सलाम।
खैरियत से हैं?
जी हाँ बिल्कुल ठीक ठाक।
माफ़ कीजिए जनाब, वो इमारत किसकी है?
वो रिहायशी बिल्डिंग है सरकार।
ये तो मैं जानता हूँ। वो दरअसल मैं एक आदमी को तलाश कर रहा हूँ जो 30 साल पहले इसी इमारत में रहता था जो आज सामने रिहायशी कॉम्प्लेक्स। क्या आपको मालूम है?
अच्छा जी, मैं तो यहाँ नया आया हूँ, मुझे सही से मालूम नहीं। आप पहली मंजिल की घंटी बजाओ, फर्शपुर साहब होंगे, वो आपकी मदद करेंगे।
अच्छा जनाब, बहुत शुक्रिया।
कोई बात नहीं, सलामत रहिए। अच्छा जी,
खुदा हाफिज़।
खुदा हाफिज़।
जी
अस्सलाम वालेकुम जनाब।
वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए।
माफ़ कीजिएगा जनाब, मैं किसी को ढूंढने आया हूँ यहाँ पर। आपको इस इमारत में रहते हुए कितने साल हो गए?
हमें यहाँ रहते हुए 30-40 साल हो गए।
अच्छा,
अस्सलाम वालेकुम। अरे अंदर आइए ना, अरे इनको अंदर बुलाओ।
हाजी साहब,
अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं आपको जहमत नहीं देना चाहता, बस आप मेरे एक सवाल का जवाब दे दें।
फरमाइए।
क्या आपको SHO रजबी की फैमिली याद है?
SHO रजबी?
हाँ, वो इस थाने का SHO था।
अच्छा, वो जो इनकलाब में मारे गए थे?
जी,
ना?
जी, जी। क्या आपको उनकी फैमिली के बारे में कुछ मालूम है?
वो तो यहाँ से चले गए थे।
कहाँ चले गए?
उसके मरने के बाद उसकी फैमिली ने वरमैन छोड़ दिया था।
लेकिन गए कहाँ?
पता नहीं, लेकिन मैंने सुना उसका बेटा तेहरान में है।
उनकी एक बेटी भी थी।
क्या आप उसकी बेटी को जानते हैं?
तलत।
जी हाँ।
बाप के मरने के बाद दरबदर हो गई बेचारी।
वो बेचारी बदकिस्मत औरत, 1 साल यहाँ रही और फिर तेहरान चली गई।
सुना है उसने अपने शौहर से तलाक ले ली थी, क्योंकि उसके शौहर की वजह से उसके बाप का कत्ल हुआ था।
नहीं नहीं, उसने अपने बच्चों की खातिर तेहरान छोड़ा था।
उनका कोई बच्चा भी था?
उसकी एक बच्ची थी साहब का शौहर से।
वो कहती थी कि मेरी बेटी को बड़े होने के बाद उसे नाना की मौत का पता ना हो, शायद इसीलिए वो यहाँ से अपने बच्चों को ले गई।
आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं?
वो मैं उनके रिश्तेदारों में से हूँ जनाब।
आप कैसे रिश्तेदार हैं जिसको अपने रिश्तेदारों के बारे में मालूमात नहीं है?
मैं कई सालों से यहाँ था नहीं, इसलिए मुझे उनकी खबर नहीं हुई। मैं कैसे उनको और उनके रिश्तेदारों को ढूंढ सकता हूँ?
जी पूछिए।
हो सकता है आजी अम्मात को पता हो, क्योंकि उसने ये जगह खरीद कर यहाँ पर ये इमारत बनाई है। आप मालूम कर सकते हैं, वो घर पे होंगे?
अभी तो नहीं होंगे।
माफ कीजिएगा, मैं खास काम से तेहरान से वरमैन आया हूँ। देखिए मोहतरमा, आप मुझे उनका टेलीफोन नंबर या एड्रेस दे सकते हैं? आपकी बहुत मेहरबानी होगी, क्योंकि मैं बार बार तेहरान से वरमैन नहीं आ सकता।
देखें, हम आपको जहेज के लिए कुछ रकम दे सकते हैं, लेकिन वो कुछ ज्यादा नहीं होगी, 1 लाख हो सकते हैं।
सिर्फ 1 लाख? 1 लाख का क्या करेंगे?
इतनी महंगाई है और हमें लड़की का पूरा जहेज जमा करना है।
जी बिल्कुल, जिन लोगों को ज्यादा जरूरत होती है हम उनके नाम लिखकर मुखय्यर हजरात से रابطہ करते हैं, फिर वही हमारी मदद करते हैं।
आपका बहुत शुक्रिया। असल में हमारी पहली बच्ची है जिसकी हम शादी कर रहे हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। बड़ी मेहरबानी।
ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगी, देखते हैं क्या होता है।
एहसान होगा।
शुक्रिया।
कोई बात नहीं, ये लें, आप ये पुर करके मुझे दे दें।
जी बहुत शुक्रिया आपका।
बहुत शुक्रिया।
कोई
आपका।
बात नहीं,
ये पेन ले सकता हूँ?
जी ले लें।
अस्सलामुअलैकुम मर्जिया साहिबा।
वालेकुम सलाम, कैसी हो?
आप कैसी हैं?
ठीक हूँ, तुम सुनाओ?
मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप यहाँ क्या कर रही हैं?
तुम्हें नहीं पता मैं क्या करती हूँ?
हाजी साहब ने मुझे फोन कर बताया था कि आप घर पर अकेली हो।
अच्छा,
इसलिए मैं समझी आप यहाँ नहीं आओगी, तो मैं काम करने आ गई।
मैं भी घर में बोर हो रही थी, इसलिए यहाँ आ गई।
माफ कीजिएगा मर्जिया साहिबा, मैं आपको टेस्ट रिपोर्ट देना चाह रही थी जो मैं खुद जाकर लेकर आ गई थी, लेकिन मुझ में हिम्मत नहीं थी इसलिए मैंने हाजी साहब को फोन किया। मैं ये सोच रही हूँ कि आप जैसी नेक खातून के साथ ऐसा कैसे हो सकता है।
देखो बेटा, ये सब अल्लाह की तरफ से होता है।
आप सही कह रही हैं, लेकिन चंद दिनों के लिए ये सारा काम भूल जाएं। मैं आपसे वादा करती हूँ मैं यहाँ का सारा काम संभाल लूंगी।
देखो बेटा, ज्यादा परेशान ना हो, मैं अभी जिंदा हूँ, मरी नहीं।
अल्लाह ना करे, आप ही कैसी बातें कर रही हैं। मैं उस फैमिली के पास जाती हूँ, उनका बाकी काम करना है। मैं उनकी फाइल आपकी टेबल पर रख दूंगी, आप आकर खुद चेक कर लीजिएगा।
ठीक है, जाओ तुम, मैं आती हूँ।
जी जनाब, फरमाइए।
क्या यहाँ के मैनेजर रजवी साहब हैं?
जी।
वो कहाँ तशरीफ रखते हैं?
जी वो अपने दफ्तर में होंगे। आप ऐसा करें, सामने वाली सीढ़ियों से ऊपर चले जाए।
आपका बहुत शुक्रिया।
जी कोई बात नहीं।
फरमाइए।
क्या आप महमूद रजबी हैं?
जी हाँ, काम क्या है?
आपने मुझे पहचाना नहीं?
नहीं, आपको पहचानना जरूरी है।
अगर आप थोड़ी देर इजाजत दे तो अर्ज करता हूँ।
जी अच्छा, तशरीफ रखें।
मैं आपके मरहूम वालिद साहब के जानने वालों में से हूं।
वालिद साहब के? मैंने आपको कहीं देखा है लेकिन कब और कहां याद नहीं आ रहा।
आप 30 साल पहले के वक्त को याद करें तो मुझे पहचान लेंगे।
30 साल? क्या आपका नाम जान सकता हूं मैं?
अब्बास मवद्दत।
तुम?
जानता हूं तुम मुझे देखकर खुश नहीं हुए।
तुम्हें आखिर यहां का एड्रेस कहां से मिला?
मैं वरमिन गया था, तुम्हारे पुराने पड़ोसियों से एड्रेस मिला है। अब भी कुछ लोग तुम्हें वहां जानते हैं, भूले नहीं।
मुझसे क्या चाहते हो?
मैं तुमसे कुछ ज्यादा नहीं चाहता, मेरे चंद सवालों का जवाब दे दो तलत के बारे में।
तलत? मुर्दों की याद कैसे आ गई?
लगता है तुम्हारे दिल में अभी तक उसका कोई एहतराम नहीं। मेरे सवाल का जवाब सिर्फ तुम दे सकते हो, उसका जवाब किसी और के पास नहीं है।
सवाल क्या है तुम्हारा?
जब तलत ने मुझसे तलाक ली थी क्या उस वक्त उसकी कोई बच्ची थी?
शौहर थे ना तुम उसके, मुझसे क्यों पूछ रहे हो?
बच्ची थी या नहीं?
अब्बास अली, अब्बास अली, अब्बास अली। तुम्हें पता है मैं कितने सालों से इस दिन का इंतजार कर रहा था।
इंतजार कर रहे थे इस दिन का?
वो दिन जब तुम अपनी बेटी को ढूंढते हुए मेरे पास आओगे।
मेरी बेटी?
हाँ हाँ, वो बेटी जो तुम्हारी है और तलत की।
ये मुमकिन नहीं, मेरी और तलत की कोई औलाद नहीं थी।
जब तुम्हें इतना यकीन था तो मेरे पास क्या करने आए हो? जब तलत कर्नल रजबी साहब की बेटी, जब से तुम जैसे बकवास फजूल और कलाश सिपाही की बीवी बनी तब से हमारे खानदान की बर्बादी शुरू हो गई। हमारी मुसीबतें उसी दिन से शुरू हो गई थी। अगर तुमसे शादी ना करती तो मेरे बाप का कत्ल ना होता, ना उसका अंजाम ऐसा होता जैसा हुआ है। बस हक था तुम्हारा, हक था तुम्हारा जो तुम्हें इस सूरत में मिला है। तुमने हमारे वालिद को छीना और तलत ने तुम्हारी बेटी छीनी।
कौन सी बेटी? उसकी कोई बेटी नहीं थी, तुम झूठ बोल रहे हो।
होते कौन हो तुम ऐसा कहने वाले? तुम्हें खुशफहमी है कि मैं भूल चुका हूं कि तुम मेरे बाप के कातिल हो?
तुम जानते हो मैं तुम्हारे बाप का कातिल नहीं हूं।
निकल जाओ यहां से।
मैं जवाब लिए बगैर यहां से नहीं जाऊंगा और मैं तुम्हारे सवालों का जवाब भी दूंगा। आज तक मुझे अपनी सफाई में कुछ नहीं कहने दिया। जिस वक्त तुम्हारे वालिद का कत्ल हुआ उस वक्त से मुझे अपनी सफाई का मौका नहीं दिया गया। मैं मजबूर हो गया था फरार होने पर। जिस दिन कर्नल साहब ने गोली चलाने का हुक्म दिया ताकि वरामिन के कफन पोशों को रोका जा सके, मैंने सिर्फ उनका हुक्म माना। इसके अलावा मेरा कोई और इरादा नहीं था।
तुमने सोचा होगा कि इतने जुल्म के बावजूद भी मैं तुमको अपना रिश्तेदार मान लूंगा?
नहीं, मैं उन निहत्ते अवाम पर गोली नहीं चलाना चाहता था।
तुमने ये भी नहीं सोचा कि तुम्हारे अलावा बाकी सिपाहियों ने हुक्म नहीं माना?
मैंने नहीं सोचा था कि उसी वक्त एक सिपाही तुम्हारे बाप की तरफ गोली चलाएगा और उन्हें मार देगा।
तुम्हारी वजह से? अगर किसी और ने भी मारा हो तो क्या? पहले तुमने हुक्म नहीं माना, कातिल तुम हो।
हाँ, मैं सजा पा चुका हूं और मुझे अपना गांव छोड़ना पड़ा और मेरी बीवी मुझसे जुदा हो गई।
सिर्फ बीवी नहीं, बीवी और बेटी। तुम्हारी इतनी बड़ी गलती के बाद अब्बास अली, तलत ने तुमसे तलाक लेने का इरादा उसी वक्त कर लिया था। लेकिन अगर कोर्ट में पता चल जाता कि तुम्हारी बीवी उम्मीद से है तो काम बिगड़ जाता, जो नहीं हो सका।
तो इसीलिए एक साल तक मैं उसकी शक्ल देखने को भी तरसता रहा और फिर बहाना किया कि मुझे अपने बाप के कातिल से नहीं मिलना।
जब तुम एक साल के बाद वापस आए तो तुम्हारी बेटी पैदा हो चुकी थी और उसी दौरान उसने तुमसे तलाक ले ली और उस वक्त तुम्हें अपनी बेटी के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। तुम्हें पता है जब तलत ने तुमसे शादी की थी मुझे बहुत गुस्सा आया था और जब तुम्हारे साथ ये सब कुछ हुआ तो मुझे बहुत मजा आया। उसने तुम्हारी बेटी को तुमसे छीन लिया। ये सब देख के मैंने उसे माफ कर दिया।
उसे मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था।
बहुत अच्छा किया उसने। वो नहीं चाहती थी कि उसके बाप का कातिल उसकी बेटी को पाले।
तो फिर तलत की बेटी को किसने पाला? और तुम इतना अच्छा काम कभी नहीं करते।
तुम इतना अच्छा काम करने के काबिल नहीं थे। मैंने कभी नहीं चाहा कि उस बच्ची की शक्ल देखूं जो अब्बास अली की सूरत रखती हो। मुझसे गवारा नहीं होता। और एक बात बताऊं तुम्हें, सुनने की हिम्मत रखते हो? तलत ने तुम्हारी बच्ची को यतीम खाने में दे दिया और उसके बाद शादी कर ली। लगता था वो भी उस बच्ची से तंग आ चुकी थी, इसलिए निजात पाना चाहती थी। अब जाओ यहां से और अपनी बच्ची को ढूंढो और तड़पो तुम भी अपनी बेटी के लिए अब्बास अली।
और अब तुम भी गौर से मेरी एक बात सुन लो। जिस बच्ची की खातिर तुम मुझे तड़पाना चाह रहे हो वो बच्ची मुझे मिल चुकी है।